देखो कल अपन ने इस गाथा 306 और 7 की उत्थानिका पढ़ी थी और उत्थानिका में स्वयं उन्होंने गाथाएं प्रस्तुत की हैं और लिख दिया उक्तम च व्यवहाराचार्य सूत्रे, तो किसी किताब का नाम नहीं लिया। गोमनसार में कहा है कि भलवल में कहा है कि इसमें कहा है, कुछ का नाम नहीं। अब व्यवहार सूत्र बस, अब व्यवहार का निरूपण करने वाले जो सूत्र ग्रंथ हैं, सूत्र माने संक्षिप्त कथन करने वाले जो ग्रंथ हैं, उनमें ये बात कही है। सारा दिन आगम खोजो है क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं था ऐसा। कैसे बताते आपको ये गाथाएं जो बिल्कुल जो समय साल में गाथाएं हैं उनसे एकदम उल्टी हैं। अभी समय साल इनके हाथ में है तो देखे नीचे ही ऊपर दोनों गाथाएं हैं, है ना। ये समय साल में जो 307वीं गाथा है वो वहां ऊपर है, अपरिकमणम अपरिशरणम है ना, अपरिहारो अधारणा चैव है ना, अनिवृत्ति अनिंदा अगरहा सूर्य बस अमय कुंभो, उसमें है विश्वकुंभो और नीचे है अमय कुंभो। और ऐसी ऊपर वाली गाथा में नहीं है कि परिकमणम परिशरणम परिहारो धारणा निवृत्ति है निंदा ग्रहा सोई अक्ष ग्रहु अमय कुंभ। ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ हैं। देखो बाकी तो 8 चीजें हैं, 8 क्या 16 चीजें हैं, प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण ऐसे है ना, तो 16 चीजें हैं और उनकी परिभाषा अपन को आनी चाहिए। जो अपन ने आपके पास में एक किताब है इसमें दी गई हैं, इसमें भी होंगी 184 पेज पे है, हाँ उस पर देख लेना। अभी मूल मुद्दे की बात तो ये है कि वहां व्यवहार में जिसे अमृत कुंभ कह रहे हैं निश्चय में उसे विश्वकुंभ कह रहे हैं। खैर ये तो चलो एक दफे हमको थोड़ी आदत पड़ गई है ना कि व्यवहार का निश्चय निषेध करता है, लेकिन यहां उल्टा भी है कि निश्चय में जिसे विश्वकुंभ कह रहे हैं व्यवहार में उसे अमृत कुंभ कह रहे हैं, और जिसे निश्चय में अमृत कुंभ कह रहे हैं उसे व्यवहार में विश्वकुंभ कह रहे हैं। दोनों तरफ से है, और इस समस्या का समाधान अपने आप अपने हो जाए, अपने कर लें तो आगे का सारा प्रकरण फिर एकदम सरल और सहज है। कभी कभी तो ये लगता है कि भाई वही वही बात तो हम कितनी दफे दोहराएंगे, मुझे रोटन करने में ऐसा लगता है कि आगे कलशों में भी वही 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 और बहुत कलश लगा दिए, क्योंकि अमृत का तो मन लग जाता है ना ऐसी जगह में। तो अमृत कुंभ और विश्वकुंभ की बात समझ लो, फिर पर अपनी शुद्ध सरल हिंदी भाषा में कि माफी मांगना अच्छी बात है कि बुरी बात है, माफी मांगना अच्छी बात है कि बुरी बात। तो व्यवहार कहता है कि अच्छी बात है भैया, गलती हो गई तो माफी मांग लेना चाहिए, हम झगड़ा निपट जाता है। पर जब कोई माफी मांगता है तो भले ही वो अकड़े जिससे माफी मांगी जा रही है, लेकिन सारा जगत तो ये कहता है कि वो तो सज्जन आदमी है, उसने तो माफी मांग ली है, साहब गलती थी तो मांगनी पड़ेगी ना। अरे साहब जगत में ऐसे भी बहुत लोग हैं कि गलती पे गलती करते जाते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। अब उनकी दृष्टि से देखो ना, है ना, उनकी दृष्टि से देखो कि उसने मांग तो ली, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं गलती थोड़ी उसने की थी, अब माफी मांगने से झगड़ा निपटता है तो निपटाओ ना, मेरे जरा से इस मुद्दे पर मैंने गलती नहीं की है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, समाज के दो टुकड़े हो जाए, अच्छी बात थोड़ी है। उसने तो गलती नहीं किए बिना ही माफी मांग ली। एक व्यवहार का बहुत बड़ा पक्ष ऐसा दुनिया में लोक में चलता है। अभी निश्चय वाले क्या कहते हैं कि माफी मांगना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा काम करना ही क्यों कि जिससे माफी मांगनी पड़े। माफी मांगना इस बात का प्रतीक है कि उसने अपराध किया है, क्या इस बात का प्रतीक है उसने अपराध किया है। इसलिए भाई साहब माफी मांगना अच्छी बात नहीं है और नहीं मांगना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं मांगना वो पहले नहीं मांगने से अलग है, ये सब आएगी इसमें बात। वो तो इन दोनों को परस्पर विरुद्ध समझ रहा, मांगना और नहीं मांगना, मांगना और नहीं मांगना। वो कहते हैं कि ये तीसरा जो नहीं मांगना है, ये पहले दूसरे वाले मांगने और नहीं मांगने से ये तीसरा है, भले नाम उसका नहीं मांगना है लेकिन उसका असली अर्थ तो नहीं करना है अपराध। इतनी सी बात है इसमें, पूरे प्रकरण में जो मैं आज सोच रहा था कि शायद ये सिविल इसमें ही खत्म हो जाएगा। यद्यपि मैं जयपुर से अगली जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार की भी किताबें लेके आया हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगने की बात है नहीं, लेकिन वो कलश इतने मार्मिक हैं, हृदय को इतने भेदते हैं कि एक दफे उन्हें पढ़ेंगे तो अपन आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती है। और इसीलिए आपको रोज ही ना पढ़वाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि खुद तो पढ़ते नहीं हैं, है? अरे भाई हम दिन भर पढ़ते हैं, तुमको तो पांच मिनट पढ़वाते हैं, है? दिन भर वो विषय हमारे दिमाग में घूमता है, ख्याल में ना। अभी यार आप पढ़ रहे थे ना, इत्रा अप्रतिकर्मण में विविश प्रणीतम, है ना? जहां पर प्रतिक्रमण को ही विष कहा है तो वहां अप्रतिक्रमण अमृतम कुटाश्यात, अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो जाएगा? इत्रा प्रतिक्रमण में विविश प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमणे अमृतम कुटाश्यात, है ना? कल उसका हिंदी पढ़ रहे थे आप, रस्ते में आते आते मैं सुन रहा था उसको, क्या पढ़ो?
मरे जहां विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहे वहां अप्रतिक्रमण को, अरे प्रमाणी लोग अधोगत क्यों जाते हैं, इस प्रमाण को क्या विरोध में क्यों नहीं जाते?
वो कहते हैं जहां प्रतिक्रमण को भी जहर कहा हो तो वहां माफी नहीं, अपराध करके माफी नहीं मांगने को अमृत कैसे कह सकते हैं? कि कहा है ना कि माफ अपराध करके माफी नहीं मांगने वाला नहीं है, ये नाम अले उसका प्रतिक्रमण है, समझ गए ना? ये तो अपराध नहीं करना ऐसा अर्थ वाला प्रतिक्रमण है, नाम दोनों का एक है। आचार्य कहता है, मैं आश्चर्य होता है कि हम जब कोई बात कहते हैं तो इसलिए उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, अधोधा नीचे नीचे क्यों जाते हैं लौट के, कि माफी नहीं मांगना तो इससे हम कहते नहीं मांगना माफी, तो आगे ऊपर जाना माने अपराध नहीं करना और नीचे जाना माने अपराध करके भी माफी नहीं मांगना। चंद्र भाई इसलिए बहुत लोग कहते थे कि जहां नीम की निबोड़ी खाने को मना किया गया हो वहां कालकूट जहर खाने के लिए कौन कहेगा? कहते थे नीम की निबोड़ी का उदाहरण देते थे। एक कम से कम 50 वर्ष पुराने प्रवचनों की बात कह रहा हूं मैं आपके सामने, देखो पहले अपन वही पढ़ लें कि अप्रतिक्रमण के साथ में जो आठ चीजें हैं वे क्या हैं। वे प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण जैसी ही हैं क्या, वे कोई ज्यादा फर्क नहीं है उनमें। इसलिए आचार्य ने आठ गिना दी और जितनी भी वर्जिश की है, व्यायाम की है, वो सब प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण पर ही की है। पेज नंबर 184 में निकालो ना, ये लिखे हुए हैं यहां पर। किए गए दोषों का निराकरण करना प्रतिक्रमण है, संयुक्तादि गुणों में प्रेरणा करना या प्रवृत्त होना प्रतिसरण है। प्रति तो हरेक में ही लग रहा है, क्रमण शरण हरण फिर धारणा, तीन है ना, प्रतिक्रमण प्रतिशरण प्रतिहरण है ना। तो दोषों को किया है और फिर उसको हमने बोलते हैं कि निराकरण करना, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण माने हैं लौटना। आप जानते हैं क्रम धातु गम धातु के अर्थ में है, गच्छति गम गच्छति है ना, गच्छति ऐसे क्रमति माने जाता है। फिर अभी आप जानते हैं धातुओं के अंत में और आरंभ में प्रत्यय लगाए जाते हैं। अंत में जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं प्रत्यय और आरंभ में जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। शब्दों के भी उपसर्ग होते हैं क्या? जैसे देखिए अब क्रम धातु है तो क्रम धातु में आ लगाया तो अक्रम हो गया ना, अक्रम। गम गच्छ तो आ लगाया तो आगच्छति, फिर अब लगाया तो अवगच्छति, तो प्रति और आ लगाया तो प्रत्यागच्छति, ऐसे अर्थ हो जाते हैं ना। तो ये जो शुरू में लगाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग और अंत में लगाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यति तौ ता अंति है ना, भवती भक्ता भवंती, ऐसा लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो अंत में लगते, अंत में लगाने से अर्थ नहीं बदलता है, एक वचन का बहुवचन हो जाता है, द्विवचन हो जाता है, समझे ना, पुरुष बदल जाता है, उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष होता है, ऐसा बदलता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता। तो उसमें नियम है उपसर्गेण धात्वर्थो नयात अन्यत बलात अन्यत्र नियते। उपसर्गों के माध्यम से धातु के अर्थ को बलात माने जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। क्या उपसर्गेण धात्वर्थो सरल है ना, बलाद अन्यत्र नियते। तो अब देखिए गम धातु में गच्छ गिदाना है, अब आ लगाया तो आना हो गया ना, एकदम पलट गया अर्थ, धातु वही की वही और अर्थ पलट गया, जाना और दूसरे का अर्थ हो गया आना। अब देखिए उसने अब लगा दिया तो जानना अर्थ हो गया, अब गच्छति माने जानता है। अब एक नहीं दो उपसर्ग लगाओ प्रति और आ तो प्रत्यागच्छति, तो जाकर लौटना, आना में तो आना हो ही गया था, तो अब उसको कहेंगे एक तो जे आया और एक गया था और फिर लौटा, तो उसके बोलते प्रत्यागच्छति। ऐसे एक एक शब्द के प्रत्यय लगाने से कभी कभी सैकड़ों अर्थ सैकड़ों शब्द बन जाते हैं। बना बता सकते हैं कोई, क्यों सुनू है कुछ बता? नहीं कुछ नहीं है, कोई कोई चिंता, थोड़ा सतर्क करता हूं, यहां वहां उपयोग जाता है, इसलिए एक धातु होती है तो उसे कितना रूप बनते हैं, एक लकार दस लकार, समझ गया, फिर आत्मनिपदी, फिर परस्मयी पदी, उस एक के 90 बन जाते हैं, फिर 180 रूप बन जाते हैं, कितना रूप, फिर उपसर्गों से लगाओ तो आगछति गच्छति, कितने उपसर्ग लगाओ तो कितने, तो एक एक शब्द मूल में एक शब्द है और रूप बनते हैं उसके हजार। अब कैसे हुए, ये तो हमें तिगंत प्रत्यय है, फिर सुगंत प्रत्यय है, फिर तद्भेद, फिर कारक, फिर कितना कितना भेद हैं, फिर समस्त पद समास, तब जाके ये हजारों शब्द बनते हैं। मानो वैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिक माने भाषा विज्ञान के वैज्ञानिकों ने ये खोज के निकाला है कि कालिदास इतना बड़ा कवि था तो उसे कितने शब्दों का ज्ञान था, माने उसने अपने साहित्य में कितने शब्दों को का प्रयोग किया है। तो 100 तक नहीं पहुंच पाए, 100 से कम शब्दों का ज्ञान था कालिदास को, वो 100 शब्दों में खेलते रहे। आप और हम जानते हैं क्या है, आप 10-20 शब्दों में जिंदगी निकाल देते हैं प्रत्यय और उपसर्ग लगा लगा करके, क्या यानी जो शब्द आप बोल रहे हैं उसकी मूल धातु निकालें तो वो बहुत लिमिटेड होते हैं। नहीं जी, बड़ा पढ़ा भाषा विज्ञान के नहीं, फिर ज्यादा ज्ञान करने की जरूरत क्या है, आपको उसमें प्रत्यय लगाना आता हो, उपसर्ग लगाना आता हो, तब उसमें तद्धित समास पद बनाना आता हो, तो आप एक शब्द के गम धातु का अर्थ जाना होता है, इतना ज्ञान हो तो आप हजार शब्द बना सकते हैं उससे। अब इतना आनंद जी, वो शब्द कैसे बनता है, अब आपने हजार शब्द मान लिए, भी हजार अलग अलग है ही नहीं, धातु क्या होती है, धातु भी जानते कि पीतल लोहा सोना चांदी, ये तो उन कसेरे लोहे पीतल की दुकान वाले बर्तनों की दुकान वालों की धातुएं हैं। भाषा की धातुएं अलग होती हैं और आयुर्वेद की धातुएं अलग होती हैं, वहां भी शब्द धातु होती है कि नहीं होती आयुर्वेद में, उनकी धातुएं अलग, भाषा विज्ञान वालों की धातुएं अलग, और ये जिनके घड़े बनते हैं इनकी धातुएं अलग। तो धातु माने क्या, वो मूल शब्द कि जिसमें हम तिगंत प्रत्यय लगाएं, सुबंत प्रत्यय लगाएं, तद्धित प्रत्यय लगाएं और जो प्रयोग करें तो हजारों शब्द बन जाए, तो मूल शब्द को खोज के निकालना, उसका नाम है धातु। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे माथा चक्कर खाते हैं, एक लोग पढ़ते हैं लक्षदान को हम दी, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, धातु है कम, कोई क्या धातु है कम, और शब्द बना है अच्छी कमन, कितने 17-18 सूत्र लगते हैं उसमें सूत्र माने हुए नियम के, जिन नियमों से हिसाब से वो बनता है, और फिर हम उसकी भाषा में बहुत सरल भाषा बना ली है, कम कम ककम कोह चू चकम उसमें आ का प्रत्यय लग गया, बाबू सी का लोप हो गया, फलाना का ये हो गया, ये हो गया, और इस तरह से अची गमन शब्द बनता है, बनता है। हम जब व्याकरण पढ़ते थे 10-11 वर्ष की उम्र में, लक्षदान कौम दी, अरे तुमको तो 16-17 वर्ष की उम्र में पढ़ना पड़ती है, हम तो 10-11-12 वर्ष की उम्र में पढ़े, तो वहां एक श्लोक बोला करते, हमारे गुरु जी सुना करते थे, अति कमत यो न जानाती, यो न जानाती बरवती बरवरी, अजरघा यो न जानाती तस्मयी कन्या न दीयते के तीन शब्दों का को बनाना जो नहीं जानता है ना, कौन कौन, अची कमत बर्बरी और अदरघा उसको लड़की नहीं देना चाहिए, वो शादी करने के कारण नहीं है। ऐसा लिखा है, अच्छी कमत यो न जानाती, यो न जानाती बर्बरी, अदरघा यो न जानाती, तस्मयी कन्या न दिएते। मैंने ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं मेरे कहने का मतलब। अभी आपको ज्यादा शब्दों का ज्ञान नहीं करना है, आप 100 शब्द भी आ गए और उनका के द्वारा जो जितने शब्द बनते हैं वे शब्द बनाना आ गए हैं, ख्याल में आई ना आपकी ना। तो आप कालिदास से भी बड़े महाकवि बन सकते हैं, ख्याल नहीं। हम कितने कितने शब्द आते, कुछ नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसे है, सब में ऐसा ही है। उन शब्दों को बनाने की प्रक्रिया होती है ना, कि जैसे कहेंगे कि जो लड़की चाय बनाना नहीं जानती हो, पापड़ सेकना नहीं जानती हो, है क्या उस लड़की से शादी भी करना चाहिए। ऐसे भी उनमें यहां भी कहानी किससे चलते हैं, कैसे चलते हैं, तो ये तो कॉमन चीजें हैं ना घर में, ये तो आनी चाहिए ना उसको। पहले जब जाते थे ना देखने के लिए तो उससे पापड़ सिखवाते थे। तो थोड़ा सा भाषा ज्ञान इसमें चाहिए ना ये सब। अब ये भी सब प्रत्येक क्रमण वो ऐसे ही बना है, क्रम धातु से बना है, क्रम से क्रमण, फिर प्रतिक्रमण, फिर अप्रतिक्रमण, उपसर्ग लगकर, प्रत्यय लगकर, ये शब्द ऐसे ही है, अप्रतिक्रमण, प्रति प्रति उपसर्ग है, और ये क्रमण, शरण, हरण, ये धातुओं के धातु रूप हैं। तो किए गए दोषों का निराकरण करना, मैंने पहले अपराध हो गया, अब उसे निराकरण करना, मैंने गलती माफी मांगकर और भविष्य में नहीं करने का संकल्प करना, उसका नाम हो गया प्रतिक्रमण। अब सम्यक्तादि गुणों में प्रेरणा करना या प्रवृत्त होना, उसका नाम हो गया प्रतिशरण। मिथ्यात्वादि को छोड़ा तो क्या करें, तो वो जो नेगेटिव बात थी ये पॉजिटिव बात आ गई, ये है प्रतिशरण। देखो अपने ये प्रतिक्रमण पाठ है ना, श्वेतांबरों में बहुत होते हैं, अपने दिगंबरों में तो रिवाज ही नहीं है, इन शब्दों से दिगंबर लोग परिचित ही नहीं है, है? अपने यहां तो अकेले वो आलोचना चलती है, तो बोध भूजादास जी लिख के नहीं गए होते तो हम वो शब्द से भी हम परिचित नहीं होते। लेकिन जो महिमा श्वेतांबरों के यहां प्रतिक्रमण की है, अब उन प्रतिक्रमण पाठों में क्या है जरा मुझे समझना, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, अपन बना सकते हैं। मैं आपको विधि बताता हूं अभी कि जितने दोष लगभग जनरल हम लोगों के जीवन में होते हैं सुबह से शाम तक सब में मिला के, हरेक में होते हो जरूरी नहीं है, कोई गलती हमसे होती, कोई गलती तुमसे होती, कोई गलती तुमसे होती, ऐसी कॉमन हमने कुछ गलतियां छाटी हैं और हमने वो प्रतिक्रमण पाठ में वो गलतियां लिख दी, उनके लिए हमने माफी मांगी कि भाई पानी छानेंगे जवानी महा डाल देंगे ये गलती ये होती है, झाड़ू लेंगे तो बुहारी लगाएंगे तो ये गलती ये होती है, ऐसी जब नहीं है ना, ऐसी सुबह से शाम तक हर धंधों में लगा करके विलास भाई उनने निकाल के और वो प्रतिक्रमण पाठ बना दिया। अब वो कॉमन प्रतिक्रमण पाठ बन गया। अब मान लो जो उसमें लिखा है, अब वो गलती हमने की ही नहीं, झाड़ू ले जाएंगा बुहारी हमने आज तक झाड़ू हाथ से छी ही नहीं, अब हम भी बोले जा रहे हैं झाड़ू ले जाएंगा बुहारी तो सत्य है झूठ, हमने जल छाना ही नहीं तो जवानी जमीन बटा ली, हम तो बैठे घटक जाते क्यों। तो ये तो वास्तव में प्रतिक्रमण नहीं है, मेरी सुनना, वास्तविक प्रतिक्रमण क्या है कि जो हम स्वयं अपने सुबह से शाम तक जीवन में देखें और उन गलतियों के लिए शाम को हम याद करके और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे, ये संकल्प लें, असली प्रतिक्रमण ये है। तो हरेक का अलग अलग होगा, वो व्यक्तिगत क्रिया है। ये तो ऐसे ही है कि हमको उसका होश ही नहीं है। हिंसा पुने झूठ जो चोरी, पर बनिता सुंदर गजोरी। क्यों अब हम बोले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या है। अब कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई, उन्हें बहुत अकल आ गई ना, लिखे जी पर बनता सो दीर्घ जोड़ी, जो दूसरे की औरत से आंख लड़ाना है। हमने कहा दूसरे की औरत से आंख लड़ाई, हम तो दूसरों के पुरुषों से लड़ाते हैं। क्यों तो हमने कहा बदल दो, पर बनता की जगह पर भरता कर दो। अरे भरता सो दीर्घ, अरे ये तो कॉमन बातें हैं भाई साहब, समझिए ना, कुछ मतलब नहीं। वो पुरुष की प्रधानता से लिखा गया, इसलिए भरता बनता लिख दिया, उसका तो मतलब विपरीत सेक्स वाले के प्रति हम आकर्षित हुए, तो इतनी सी बात है। अकेले आंखें जोड़ने से मतलब नहीं है कुछ। अब मेरा मतलब समझे कि नहीं समझे, लेकिन हम ऐसे सुधार करते हैं, असली सुधार तो करते नहीं है। यदि असली प्रतिक्रमण एक दिन भी हो जाए, 10 दिन भी हो जाए, तो हमारा जीवन इतना परम पवित्र हो जाएगा कि फिर द्वारा हमें प्रतिक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इसमें तो बताएंगे कि काहे को इतनी लंबी लंबी बातें करते हो, 6-6 पेज के प्रतिक्रमण की क्या जरूरत है। तो एक ही तो गलती की राम जी भाई के शब्दों में, कौन सी गलती क्या अपने को नहीं जाना, ये गलती थी, बस अपने को जान लो, वो सारा प्रतिक्रमण हो गया क्या। मैंने हर जगह ऐसी परंपरा चल गई। श्रीमद बहुत आध्यात्मिक पुरुष थे, पहले वो वैष्णव थे, फिर गुजरात में थे और वहां श्वेतांबर लोग ज्यादा थे, तो जैनियों में श्वेतांबरों के संपर्क में आए और बाद में उन्हें कुंद कुंद के समयसार वगैरह हाथ लगी, तो फिर श्वेतांबर बन गए, फिर वे दिगंबर बन गए और 30-32 वर्ष की उम्र में चल दिए। अब उनकी बहुत सी बातें हैं, वैष्णव धर्म की भी हैं, उनके प्रारंभिक समय की। हम तो किसी भी महापुरुष को मानते तो जन्म से ही महापुरुष मान लेते हैं ना, कहा नहीं ऐसा हुआ था, जब पैदा हुए थे तो गांव में कुत्ते भौंकने लगे थे क्या अब क्या क्या जोड़ देते हैं अपन उनकी साथ में, ऐसी घटनाएं कोई लेना देना नहीं है जिनसे। अब वे पहले वैष्णव थे, अब वे भी हमने जोड़ दी, फिर जो श्वेतांबर थे तब वे भी जोड़ दी, अब दिगंबर बने वे भी जोड़ दी, सब कुछ मिलाकर श्रीमद हो गए। उन्होंने 2 प्रतिक्रमण बनाए, एक छोटा प्रतिक्रमण एक बड़ा प्रतिक्रमण, बोलते ना, तो उन्होंने शुद्ध गुजराती में लिख दिए। यहां बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिन्हें भी दोनों ही प्रतिक्रमण याद होंगे और वो श्रीमद वाले सब कराते हैं। तो हम अध्यात्म शरीर सर्कल में जाते हैं, बम्बई जाते हैं ना हर साल 30 साल से श्वेतांबर परिसर में प्रचार करने, तो उसके बाद में वो दिनेश भाई जो उसके हैं चेयरमैन, वे प्रतिक्रमण बोलते हैं वो श्रीमद का। तो उसने आता हूं पापी छू हूं दुष्ट छू हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ऐसा गद्य में है, वो पद्य में नहीं है, तो वो बोलते हैं। तो करीब 15-20 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी घटना होगी कि मेरा पोता था, वो 5-6 वर्ष का था, मेरे कान था ना वहां पर, तो शास्त्री हो गया है ना, तो वो हमारे साथ वहां गया, तो अपने पापा के साथ नीचे बैठा था, प्रवचन सुन रहा था, तो अंत में सुना, तो उसने 2-3 दिन लगातार सुना, तो वो बोलता है कि पापा ये प्रश्न है मेरा कि क्या कि दिनेश भाई पापी है कि क्यों क्या बात करता है, चुप रहे, नहीं नहीं वो बोलता है रोजीना कि मैं पापी। देखो हम उस बच्चे को मूर्ख समझते हैं और अपने को बुद्धिमान, हम बोलते हैं कि मैं पापी हूं और अपने को पापी नहीं समझते, ना कोई दूसरा समझता हमें, बिल्कुल बिल्कुल औपचारिकता हो गई ना। अरे मैं पापी हूं ये बोल रहे हैं तो वो उसका अर्थ यही है कि मैं पापी हूं। क्यों बोलो विलास भाई? तो जैसे हमारे आचार्यों ने हमारी स्तुतियां विनतियां बना दी और वैसे ही चलती रहती है गाड़ी। मैंने देवसा गुरु की जयमाला में लिखा कि राग धर्म है धर्म राग में, अब तक ऐसा जाना था सुख कर्म कमाते सुख होगा बस अब तक ऐसा माना था, पर आज समझ में आया है कि जीत राग का धर्म हा और राग भाव में धर्म मानना। रोज यहां लोग बोलते रहते आज तो तेरी समझ में आ गया ना। कितनी दफे आज समझ में आएगा और वो न समझ ना समझ में पर उन्मत हो जाएगी। ये तो एक प्रतीक है, कुछ चीज को हमें समझना चाहिए क्या उसका भाव ये है। तो ऐसे इन सब चीजों में हमें समझना चाहिए। तो आठ चीजें अपन समझ लें प्रतिक्रमण में घटा देंगे आचार्य से। तो जी ना इतना इतना समय, अभी आप कहोगे एक दिन प्रतिक्रमण नहीं किया आपने, एक घंटा खराब नहीं किया उसमें, तो सब एकदम आप भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए, खत्म हो गए। अब सुबह से शाम तक इतनी कठोर दिनचर्या बना देते हैं साधकों की, साधक माने साधु संत जिन्हें अपन कहते हैं, एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है वे आत्मा में जाए कब, उन्हें गर्दन तो उठाने दो। छह घड़ी सुबह, छह घड़ी दोपहर में, छह घड़ी शाम को सामायिक, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे सामायिक माने भगवान आत्मा का अनुभव था, शुद्धोपयोग था। अब उन्होंने सामायिक में लगा दिया सामायिक पाठ, ये बोलना फिर ये बोलना, फिर भक्तांबर का पाठ बोल लेना, फिर फलानी स्तुति बोल लेना, पूरा कोर्स है संस्कृत प्राकृत भाषा में। अब बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, सांस लेने को फुर्सत नहीं। वो शुद्धोपयोग में कब जाएंगे? तो वो शुद्धोपयोग के साधक हैं कि बाधक हैं वो क्रियाएं तो किसी समाज में कही जा सकती है? ये तो गुरुदेव ने ये सभा जोड़ी है इसलिए अपने इतने ऐसा कह रहे हैं। यदि किसी दूसरी सभा में जाके कह दें तो लेने के देने पड़ जाए। तीन हो गए अपने, मिथ्यात्व रागादि दोषों का निवारण करना वो प्रतिहरण है। अब पंच नमस्कार आदि मंत्रों और प्रतिमा माने जिनबिंब आदि बाह्य द्रव्यों के आलंबन से चित्त को स्थिर करना, इसका नाम धारणा है। बाह्य विषय कसायादिक में ईहागत, ईहा मन इच्छा, इच्छायुक्त चित्त का निर्वर्तन निवारण करना यह निवृत्ति है। अपने आप की साक्षी से दोषों को प्रकट करना निंदा है। तो गुरु की साक्षी से दोषों को प्रकट करना वो गर्ह है। ये निंदा वगैरह में क्या फर्क है? आप मन में सोचें, वो अपने आप में कहते ना वो है निंदा, और फिर मुंह से बोले वो है गरहा। एक ही क्वालिटी की है दोनों। और हम तो निंदा करने को बोलते हैं कि निंदा में तो कुछ किया ही नहीं जाता, सोचा जाता है, देखा ना अपने आप में अंदर निंदा में नहीं है, ये है नहीं ऐसा, उसमें नहीं है। तब तो आसू भी आते ना पांच अत्याचार और पांच भावनाएं, बोलो कहां है? मिथ्या दृष्टि जीव की स्तुति करना, प्रशंसा करना, संस्तवा आता ना, हाँ बोलो बोलो। परात्म क्या नाम, गोत्र कर्म, ऊंच गोत्र और नीच गोत्र के बंध के कारणों में परात्म निंदा आत्मा में, ये नहीं कह रहा हूं मैं जो सम्यक दर्शन के पांच अतिचार हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उसमें आता है संस्तवा और प्रशंसा, दो शब्द आते हैं,
अन्य दृष्टि संस्तवा,
हाँ अन्य दृष्टि संस्तवा और प्रशंसा, ये शब्द आते हैं ना। अन्य दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, तो संस्था और प्रशंसा माने क्या? वो कहते हैं कि मन में उसकी महिमा आना, इसका नाम प्रशंसा है। उसे अपन तो मुंह से बोलने को प्रशंसा बोलते हैं और वाणी से बोलना उसका नाम है संस्तवा माने स्तुति। अब अपने सूत्र जी में पढ़े हैं, लिखे हुए हैं सभी परिभाषाएं भी पढ़ी हैं, ये भी पढ़ लेंगे आठ परिभाषाएं, और अपनी चलेगी वही गाड़ी। हमने उन्हें बहुत प्रशंसा की, उनके मुंह से दो शब्द ही नहीं निकले हमारी प्रशंसा में। क्यों होता क्या नहीं, हमारे तो प्रशंसा तो सोची जाती है भाई साहब, दूसरे के प्रति अपने हृदय में महिमावंत होना इसका नाम प्रशंसा है। मुंह से एक शब्द नहीं बोले, बोलो आप लोग सोचो मन में, ये प्रशंसा का अर्थ समझते थे आप? तत्वासूत्र में लिखा, सबने तत्वासूत्र पढ़ा, और जिनने अर्थ लिखा उनने भी ऐसा ही अर्थ लिखा, हमने भी वहीं से पढ़ा है, ऐसा नहीं कहते नहीं, लेकिन उसको फीलिंग करने की बात है, वो फीलिंग कोई नहीं करा, वैसा बस पढ़ लेते हैं। अब आप क्या करोगे, पूछो मेरे से पूछो ना, आप क्या करोगे लिखने के अलावा, आप कर क्या सकते हो है? क्यों बोलो डॉक्टर साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए, अर्थ तो वही है मेरे पास करके, मैं उसको वहां प्रश्नोत्तर में डालूंगा, फिर कहूंगा, फिर एक शिष्य को खड़ा करूंगा, फिर वो पूछेगा है ऐसा अर्थ माना जाता है, ऐसा करते हैं, उसको मचाऊंगा, एक पेज में मचाऊंगा, फिर हरेक को याद रहेगी। जो पाठ याद नहीं होता है ना, तो गुरुजी एक चांटा जड़ते हैं ना, तो फिर याद हो जाता है क्या नहीं, क्योंकि वो शब्द फिर पाठ उस चांटे के साथ जुड़ जाता है, फिर कभी नहीं भूलते। और कमल जी चांटा कहां मारा जाता है, कहां मारा जाता है मालूम, नहीं मारते ना गुरुजी चांटा मारे ही, वो हमेशा यहां मारे हैं, और कोई बात कोई गाल पे मारे कोई कहीं मारे वो अलग है, गुरुजी कहां मारते हैं, चेथी पे है? क्यों, और गुरु जी चांटा मारते हैं तो वास्तव में याद आ जाता है, अपन सोचते रहते हैं पर याद नहीं आता है जवाब देने में, एक एक लगे एकदम याद आ जाता है। क्यों, फिर वैज्ञानिकों ने शोध कर ली इसकी, अपने दो मस्तिष्क होते हैं ना, एक बड़ा और एक छोटा होते हैं ना, तो हमें जो चीजें पहले हमें याद है पहले की और अभी तत्काल भूल गए, तो तत्काल रिएक्शन देना किसका काम है, छोटे माथे का, और सोच समझ के जवाब देना बड़े माथे का। अब हम जो सामने वाले से पूछते हैं तो वो बड़ा माथा मारता है तो उत्तर नहीं आता है, और फिर वो जब इधर लगाता है चांटा तो छोटा माथा सक्रिय होता है, तो उत्तर आ जाता है। नहीं जानते आप, नहीं डॉक्टर, तुम कह के डॉक्टर हो, किसने तुम्हें डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर तो हम हैं। देखो कोई आपको मच्छर काटे और आप सो रहे हो तो हाथ अपने आप जाकर के वहां पर पड़ता है, वो किसका काम है, अब समझ में आ गया, और दूसरे ने सामने ने चांटा मारा हमें तो हम हर दफे बदले में चांटा ही नहीं मारते हैं, कभी हाथ भी जोड़ते हैं, भैया हमारी गलती क्या है, क्यों ये बड़े माथे का काम है, तो समझ के अभी गड़बड़ करी तो दो चार और पड़ेंगे, ये सोच समझ के बड़े माथे का उपयोग करके प्रयोग हुआ है, और ये तत्काल रिएक्शन होता है ना वो छोटे माथे का काम है। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटे माथे में से नहीं, बड़े माथे से काम करो, सोचो समझो उसको, जब प्रशंसा और इस तरह का क्या है। अब इसमें क्या है कि किसाब दुनिया ने बोलती हम क्या करें, तो हम ऐसा कहेंगे कि यद्यपि इस शब्द का अर्थ यही है पर लोक में ऐसा भी प्रचलित है, क्या लोक में इसका अर्थ ऐसा भी प्रचलित है, इसलिए जहां जैसा प्रकरण हो वैसा अर्थ निकालना चाहिए। अब देखो ये आठ जो परिभाषाएं हैं तुम्हें याद करने पड़ेंगी बेटा, हम जो ज्यादा समझाने का इनमें नहीं है, ये याद करेंगे तो सब चीजें घटित होंगी, अब हम बार बार इनको नहीं करेंगे, अब हम तुमको सिर्फ प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण शब्दों के माध्यम से ये सारा प्रकरण आगे चलाएंगे। जो इन आठ को याद कर लेगा उसकी बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आएगी, और जो हम प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण पे घटाएंगे वो इन आठों पे ही घटा के देख सकता है। समझ नहीं ना, समय सार में कई जगह आता है ना, ऐसी कहकर फिर तुम 16 गाथाएं बना लेना, आता कि नहीं आता है? कई जगह आता है 16 सूत्र बना लेना, वो सूत्र माने गाथा। अब ये आप इतने से बड़े विद्वान भी बैठे प्रवचनकार और ये सब बैठे बैठे तो किन्नों ने एकाद सूत्र किसी ने कभी बनाया है? मतलब आचार्य देव की आज्ञा का पालन आपने नहीं किया। आचार्य देव भी सोचते होंगे बिना मरे स्वर्ग नहीं होता है, मुझको ही बना के देना पड़ेगा। है कोई ऐसा आदमी आपको दिखता है कि जिसने ये सूत्र बनाए हों? नहीं दिखता, वो आदमी भी नहीं दिखता, डबल चश्मा लगाओ। अरे पूज्य गुरुदेव श्री को आप पढ़ो बारीकी से तो वे घटित कर करके बताते हैं, और गुरुदेव श्री को नहीं पढ़ सकते हैं तो अपना समय सार अनुशीलन पढ़ लो, उसमें मैंने घटा घटा के बताया है। वो है मेरा कुछ नहीं है एक मैं उपयोग मैं, है ना? और फिर राग मेरा कुछ नहीं है एक मैं उपयोग मैं, देश मेरा कुछ नहीं है एक मैं उपयोग मैं। मैंने बताइए ना, गाथाएं बना बना के बताइए, फिर आप पे भी छोड़ दीजिए क्या कुछ तुम बना लेना। दस पांच बना के बताई हैं, अब बस एक शब्द पलटना है आपको, बस खत्म है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम उस वक्त इतना थोड़ा माथा मारते तो वो चीज हमारे लिए हमेशा याद रह जाती है। अब लौट के अपन पीछे ही चलो। मूल समय सार पर आ जाए, इसलिए कि वहां पर दोनों गाथाएं, दोनों प्रकार की गाथाएं नीचे ऊपर हैं। ये गाथाएं व्यवहार की गाथाएं हैं ना, अपन ने छोटे टाइप में छापी, और निश्चय की बड़े टाइप में, हम सोनगढ़िया हो ना। अरे नहीं, वो तो प्रश्न की गाथाएं हैं, शिष्य ने टीका में, वो टीका का अंश है, वो समय सार का अंश नहीं है, और ये गाथाएं हैं, ये समय सार का अंश है। तो एक तो उनके दोनों में और कुछ नहीं है, आठों के नाम गिनाए हैं, प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार धारणा नियति निंदा गर्हा और सोही का क्या है, शुद्धि, और ये आठ प्रकार के विष्कुंभ हैं और ये आठ प्रकार के अमृत कुंभ हैं। और इसका जो तरकीब मैंने आपको बताई कि भाई माफी मांगने की अपेक्षा माफी मांगने का मौका ही नहीं आए, ऐसी परिणति वास्तविक अमृत कुंभ है, पर इस लाइन पर सारी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है जो अपन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पढ़ो, 417 पेज है बड़े समय सार में, उसमें ध्यान रहे यहाँ प्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ, विष्कुंभ माने जहर का घड़ा, विष माने जहर और कुंभ माने घड़ा का घड़ा, और अप्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ माने अमृत का घड़ा कहा है, जबकि उत्थानिका में उद्धृत गाथाओं में प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ और अप्रतिक्रमण आदि को विष्कुंभ कहा गया है। दोनों कथन एकदम परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, जिन्हें आचार्य शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा है उन्हें यहाँ विष्कुंभ कहा जा रहा है, और जिन्हें वहाँ विष्कुंभ कहा है उन्हें ही यहाँ अमृत कुंभ बताया जा रहा है। वस्तुतः बात यह है कि आचार शास्त्रों में समागत उक्त कथन व्यवहार कथन है, और यहाँ जो कथन किया जा रहा है वो निश्चय कथन है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद इस प्रकार खोलते हैं। राजेंद्र सोचो ये बिल्कुल विरुद्ध है क्या नहीं है, तो निश्चय व्यवहार एकदम बिल्कुल विरुद्ध है क्या नहीं है। अब उसके विरुद्ध भाव को लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या यदि उस विरुद्ध भाव को भी 1% कहीं से भी थोड़ा भी उसके प्रति कोमल व्यवहार रखेंगे, आज तक की हमारी समस्या ही है श्रद्धा के लेवल पर जो हमारा कोमल व्यवहार उनके प्रति है वो बिल्कुल हमारे मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। देखो कठोर उदाहरण देता हूं थोड़ा इस बात को समझने के लिए। एक मां बहन है, वो अपना उसका पति है और फिर आलोस पड़ोस के वो सब रिश्तेदार भाई बहन ये सब बहुत पुरुष हैं और सबसे प्रेम से रहना चाहिए कि नहीं, बेबा बोलो अपने बोलते कि नहीं बोलते हैं कि सबसे हमें प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए, पुरुषों को भी ऐसा, अपनी पत्नी को छोड़कर और बहुत महिलाएं हैं तो उनसे प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए कि नहीं। अभी इस प्रेम के व्यवहार रखना चाहिए इस बहाने वो जो पत्नी का पति के प्रति प्रेम है क्या अंश मात्र भी उसका समर्थन किया जा सकता है। जब वो बात आई पति जैसा प्रेम का कोई किसी कीमत पर रंज मात्र भी नहीं रखा तो गया, तो श्रद्धा के लेवल पर ये कहेंगे किसी से भी उसका प्रेम नहीं होना चाहिए। और फिर वो चारित्र के लेवल पर, चारित्र माने जब व्यवहार के लेवल पर कि जब तक गृहस्थ में है तो सभी पड़ोसियों से भी अच्छा व्यवहार रखना ही पड़ेगा ना, ये दोनों बातें। अब ये सारा निर्णय तो श्रद्धा के लेवल पर चल रहा है और आप यहां वो चारित्र के लेवल वाले जो कथन है आगम के वो निकाल के लाके रखते हो। यहां लिखा, यहां लिखा, हजार जगह लिखा होगा ना, एक करोड़ जगह लिखा हो तो भी हमारे पास कोई घबराहट की बात नहीं है, तो व्यवहार कथन है। देवर से जेठ से घर में वाले और सबसे एकदम बढ़िया से बढ़िया से व्यवहार रखना चाहिए ना, लेकिन उसमें रंज मात्र भी पति संबंधी व्यवहार का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं स्वीकार किया जा सकता है। ऐसी बात है, ये श्रद्धा के लेवल की बात चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि ये जो जितने जितने प्रतिक्रमण तुम कर रहे हो सब, अब समझ लो कितना खतरनाक बात है। ये एक विष का कुंभ है, माने तुम जहर पी रहे हो। यदि इसको शास्त्रीय भाषा में कहें तो सब सुन लेते हैं और जब हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलें तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये हमारे काम का सब जहर पीना कह रहे हैं, अरे ये कहेंगे समय खराब करना है कि तुम नहीं कर, अरे रोजीना बेई बेई दोहराए जा रहे हैं, झाड़ू लेने झाड़ू ये कब तक ये माथे में से झाड़ू कब निकलेगी, मतलब सोचना समझने का कोई काम ही नहीं है। देखो थोड़ी कठोर बात कहता हूं, अपने लिए उपयोग करना है उसको कहीं तुम प्रवचन में मत कहना कि तुम भी सब कहने लगोगे तो फिर मुझे कौन बुलाएगा। बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हारे पास उतना पल्ले में पुण्य चाहिए, उसका अनुकूल वातावरण चाहिए, उसके पीछे उतना आगम के प्रमाण चाहिए और समझे ना, और पिटने की पूरी तैयारी चाहिए, फिर कह सकते हो। फिर कह सकते हो, पर समझना हो तो मैं अभी आपको बोल रहा हूं। हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए कि हम रोजाना मंदिर में 1 घंटा देते हैं, अब हमको बोलेगा बहुत मनसूर निकल गया, मुफ्त में ही निकल गया, अब आज से तो हम दो घंटा दिया करें। तो हमने तो अपने जो वैराग्य भाव अंदर से आया उसका हमने क्या किया कि मंदिर का समय डबल बना दिया, बढ़ा दिया बिल्कुल, और दुकान में से घटेगा वो तो दुकान में एक घंटा कम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक पूजन की तीन पूजने शुरू हो गई, भक्तामर का पाठ करते थे साथ में महावीर अष्टक भी जुड़ गया, मैंने वो जो 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 हम करते थे एक घंटे में उसी टाइप की और चीजें वे बढ़ गई। अब हम तीन घंटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक माला फेरते थे दो फेरन लगे, फिर तीन फेरन लगे, वही नमो का आनंद का रिपीटिशन, नमी का आनंद का रिपीटिशन है क्यों। तो तुम तो 24 ही घंटा करोगे धर्म तो भी तुम्हें रंजमान धर्म होने वाला है, क्योंकि जो तुम अभी तक कर रहे थे वही तो कर रहे ना, तो उसमें धर्म हो रहा होता तो बाकी के में होएगा। अब सामाय काय का नाम है, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए समझना। शुरू में जो अपनी विधि बताई है सामायिक की शास्त्र में कि वो चारों दिशाओं में तीन तीन आवर्त लेना, ये करना, वो सारी क्रिया अभी मैं खड़े होकर बता नहीं सकता आपको, लेकिन आप समझ लेना वो अवश्य करना, उसका विरोध नहीं है, वो बहुत सार्थक है। कैसी कि चारों दिशाओं में ऐसे घूम के ऐसे तीन तीन दफे से नमस्कार करते हैं, तो चारों दिशाओं में घूमने का क्या मतलब है कि तुम सामायिक को बैठो तो निरापद स्थान में बैठो, तुम देख लो चारों तरफ कहीं ऐसा तो नहीं है कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, गाय भैंस हो, और फिर जो तुमको बीजों को डिस्टर्ब करे वो है चारों तरफ देखने का, कोई नहीं देखता, चक्कर लो काट, चक्कर लो काटता है वो, तो चारों तरफ के वातावरण को देख लो अच्छी तरीके से है? और चारों दिशाओं में जितने जिन मंदिर हैं, तीर्थ हैं, बहुत दूर समय शिखर तक है ना, तो पूरब की तरफ करो तो समय शिखर को, पश्चिम की तरफ करो तो गिरनार को, उनको भी नमस्कार पहुंच जाए, और ये भी है तो उसका मैं निषेध नहीं करता। फिर उसको नौ दफे नवो कार्य मंत्र पढ़ो, उसका भी निषेध नहीं है, और अंत में उठो तब भी ऐसा करो, उसका भी निषेध नहीं है। अब मामला बीच का है, अब एक घंटे की समय करना है तो शुरू का तीन मिनट का काम है, अंत का तीन मिनट का काम है, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जितने भी प्रवचनकार हैं तो शुरू का पंद्रह दिन बोलते ही हैं, क्यों संतप्त मानस कोई कुछ भी बोलता होगा है? और अंत का भी ये बोलते हैं कि मैं ज्ञान अनुसार जो भी आप बोलते हैं खड़े होकर बोले जा वाणी के ज्ञान से सूजल बोलते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। ये बीच में एक घंटा क्या होता है बात उसकी है, और बीच में भी हम इनको बांध देते हैं, तीन मालाएं फिर नोकार मंत्र की, फिर भक्तामा जी का पाठ कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, समय साहब जी का पाठ कर लेना, अब बस तुमने वो पूरा करा। अब एक घंटा जो है वो असली धर्म क्या है उसके बारे में सोचो, वो आत्मा क्या है उसके बारे में विचार करो, उसमें उपयोग स्थिर करने की कोशिश करो, पहले समझोगे तब तो करोगे ना, अभी तो समझा ही नहीं है ना वो क्या है, वो करो तो वो हरेक का अलग अलग होगा, उसके स्तर से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हरेक के कोर्स बने हुए हैं। एक पूजा तुम पद नहीं बना सकते हो तो मत बनाओ, लेकिन एक पूजा तुम किसी दूसरे की नहीं करके, कभी गुगल जी की करते हो, कभी दानव राय की करते हो, पंडित रघुवंत जी की करते हो कभी, अरे भगवान की करो, इनकी मत करो, इनकी मत पढ़ो, और तुम उसको सीधा अपने मुंह से ही बोलो, और जो बोलना हो वो लिखते जाओ, फिर पढ़ना उसे, तब मालूम पड़ेगी तुम्हारी पूजा काय की होती है, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, ऐसी बातें लिखोगे, पर नहीं अच्छी बात कोई तत्व की बढ़िया बात लिखो, आत्मा परमात्मा की, तो तुम निहाल हो जाओगे, नहीं सही करता गद्य सही, कोई गद्य में थोड़ी पद में ही होती है पूजा, टूटी फूटी भाषा सही, क्या क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो विचार अपने तो होंगे कि ये किसी ने आज तक एक दफे ऐसी पूजा मालूम तो पड़ेगा कि पूजा क्या चीज होती है। वो आठ चीजें होती हैं, वो कुछ टिकट यहां से वहां ट्रांसफर की जाती है, कुछ दम नहीं है। तुम एक दफे वो करके देखो और अपने विचारों को देखो, छह महीना करके देखो कहां से कहां पहुंच जाते हो तुम। ऐसी समय ऐसी सब क्रिया धर्म की हर क्रिया को, क्योंकि तुम सब उनमें ही बोले जो बाहरी क्रियाओं में बोले अपने को लगा दोगे तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या में तो एक मिनट में मिलेगा तो करोगे क्या। हम तो उस सब में से काट के 24 घंटा ये करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें जो फर्क दिखाई देता है थोड़ा बहुत वो इस बात का दिखाई देता है। हो गया समय, लेकिन मैंने आज तक कई दफे पूजा करने की कोशिश की है, ऐसी नहीं है कि नहीं की है। आप लोगों की शिकायत है कि मैं नहीं करता हूं, लेकिन एक दफे भी पूरी पूजन मेरी हुई नहीं है। किसी भी पंक्ति में उपयोग भटक जाता है और उसे विचार चिंतन चल निकलता है और तब तक तुम जल से फल तक पहुंच जाते हो। लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं कि लो लो पंडित जी लो जल चटक तो चढ़ाओ। तुम अपनी चढ़ा पा रहे, मुझे चढ़ाना होगी तो मैं उठा के नहीं चढ़ा सकता, तो अपनी पूजा करना, मुझे अपनी करने दे। कि तुम भूल जा रहे, अरे भूल जाने देना। एक मिनट सच्ची घटना सुना करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मैं इंदौर से जयपुर परमानेंट जा रहा था, तो हमको ऐसा विचार आया कि इंदौर के आसपास के तीर्थ हैं तो इसके एक दफे यात्रा कर लेना चाहिए, फिर कभी मौका मिला या नहीं मिला। ये सब 45-46 वर्ष पुरानी बात है। तो हम मक्सी जी गए, अब मक्सी जी गए वो मंदिर में 2 घंटे दिगंबरों के हैं और फिर बाकी 22 घंटे सीताम्बरों के हैं। तो हम गए तो जल्दी दिगंबर बाजारी था, उसने थाली माली लगा दी, हम सब पूजा करने लग गए। हम पूजा करने लगे तो हमारी तो पूजा जैसी हो वैसी हो, हम वैसी कर रहे थे तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, वे करने नहीं देंगे आपको पूजा। मैंने कहा भैया वे तो जब आएंगे तब आएंगे, तू अभी नहीं करने दे रहा। वे तो तब नहीं करने देंगे और तू अभी नहीं करने दे रहा। कह नहीं मैं तो साहब आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी, पूरी नहीं हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं। मुझे मेरा क्या स्वार्थ है उसमें, बात तो तुम ठीक कहते हो कि हमारी पूजा आज तक पूरी भई कब है, जब आज पूरी होगी हमें तो शांति से करने दे। यदि पुष्प तक कर पाओगे और यदि वो बीच में ही आगे तुम्हें हटा देगा थाली तो क्या होगा, क्या होगा पुष्प तक करके बंद कर दूंगी। अब आपको भी मदद पता लगेगा कि वो ऊपर से नीचे तक देखे कौन सा आदमी कहां की दुनिया से आया है। और तुम्हें तो शुरू करने के साथ खत्म करने की पड़ती है, जल्दी खत्म कर जल्दी क्या खत्म करना है क्या शुरू करना है। जो तत्व का हम भगवान के गुणों का स्मरण का विचार कर रहे हैं, अब उसी पे हमारा उपयोग लगा हुआ है तो हमारी पूजा तो चालू है। वो बंद कर देगा तो थाली माली उठा ले जाएगा, हमारी चालू रहेगी, उसमें क्या फर्क होता है। लेकिन दुनिया में ऐसा व्यवहार माना नहीं जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब समझ गए ना, ये तो आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। वो दुनिया की सब आलोचना सुनकर ये पूजा नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, है ना, ते कुछ तो करते हैं। और जो करते हैं उसका कुछ माल हाथ में है कि नहीं है, और तुम सब कुछ करते हो तुम्हारे हाथ में क्या है बताओ। दुनिया बने की वृत्ति है रखती, काम नहीं परिणाम निखरती। तुम तो ये बताओ क्या कमाया, दिन भर कैसे कमाया, कितनी मेहनत की हमें नहीं सुनना, तुम तो हमें रिजल्ट बताओ कि क्या है तुम्हारे हाथ में। तो वस्तु के स्वरूप पर गंभीरता से विचार तो करो, एक एक पंक्ति पर विचार तो करो, सोचो निकालो, जिसका निकले निकल दो, नहीं निकले नहीं निकल दो, आगे की सही आप समझ चलेगा कौन। लेकिन चिंतन मनन करना चाहिए तो हर क्रिया में जान आ जाएगी। ठीक है।